الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين، إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا آتنا علما. جس کلاس میں ہم سورہ انعام کی تفسیر پڑھتے ہیں، معرف القرآن جلد نمبر 3 سے، اور جو آیات زیر گفتگو ہیں وہ آیات نمبر 52, 53, 54 اور 55 ہیں، جن میں سے ابھی صرف پہلی آیت کا کچھ حصہ تھا جس نے پڑھا، بلکہ پہلی آیت پڑھی اس میں سے. تو امید ہے کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ آیات معرف القرآن کے اندر کہاں پر ہیں، اور امید ہے کہ آپ سب کے سامنے کتاب یا اس کے صفحات بھی موجود ہوں گے، اسکرین کے اوپر بھی شیئر کیے جاتے ہیں. تو ان کا ترجمہ پڑھ چکے تھے، خلاصہ تفسیر بھی پڑھ چکے، اور معرف و مسائل میں بھی ہم کافی آگے پہنچ چکے. یہی آیات جو ہیں وہ جمعے کے بیان میں بھی چل رہی ہیں، تو ان میں بھی کافی ساری باتیں ہوئی تھیں. امید ہے کہ آپ میں سے اکثر کو سننے کا موقع ملا ہوگا. تو ہم اس وقت پیج نمبر 335 کے اوپر ہیں، 335، جس میں یہاں تک ہم نے پڑھا تھا کہ نبی علیہ السلام کو جن لوگوں کے پاس بیٹھنے کا حکم دیا گیا، یا جن لوگوں کو اپنے پاس سے نہ ہٹانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، تو وہ لوگ کون تھے؟ غریب صحابہ تھے، مسکین صحابہ تھے، اور جن لوگوں نے اس کا مشورہ دیا تھا کہ ان لوگوں کو آپ ہٹا دیں، یعنی ان غریبوں کو آپ ہٹا دیں تب ہم آ کر کے بات سنیں گے، تو وہ سرداران قریش تھے. تو ان لوگوں کی بات نہ ماننے کا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا. بہرحال یہ سب باتیں کر کے آگے ہم پڑھ رہے ہیں 335 صفحے کے اوپر، کہ دوسری آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے اسی طرح ایک کو دوسروں کے ذریعے آزمائش میں ڈال رکھا ہے، یعنی انسانوں کے ایک گروہ کو انسانوں کے دوسرے گروہ کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، فَتَنَّا فتنے میں ڈالا ہم نے، تو فتنے میں یہاں پہ ڈالا سے کیا مراد؟ آزمائش میں ڈالا، امتحان میں ڈالا. یہ دنیا پوری کی پوری ہی دار امتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ امتحان ہی لینے کے لیے یہاں پر انسانوں کو بھیجتے ہیں. جو اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اسی کو پھر دار الجزا یعنی جنت میں جگہ ملتی ہے، اور جو امتحان میں ناکام ہوتا ہے تو اس کو پھر دار السزا یعنی جہنم میں جگہ ملتی ہے. یہی پورا کا پورا معاملہ ہے یہاں کا، یہی فلسفہ ہے، یہی معاملہ ہے، یہی حقیقت ہے. تو یہاں پر پھر رؤسائے قریش یعنی قریش کے جو رئیس تھے، رئیس کہتے ہیں سردار کو، ان کو خدا تعالیٰ کی اس قدرت تو دوبارہ سے جملہ پڑھ لیتے ہیں ورنہ پھر سمجھ میں شاید نہ آئے. کہ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے اسی طرح ایک کو دوسروں کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ رؤسائے قریش خدا تعالیٰ کی اس قدرت قاہرہ کا تماشا دیکھیں، کہ غریب مسلمان جن کو وہ حقیر و ذلیل سمجھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنے سے کس مقام پر پہنچے، اور دنیا اور آخرت میں ان کو کیسی عزت حاصل ہوئی اللہ اس کے اللہ کے رسول کا اتباع کرنے سے. تو اللہ کے رسول نے جو کیا تو اسی کی اتباع کریں گے نا، جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو اس کی اتباع کرنے سے تو دنیا اور آخرت میں عزت حاصل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے، اللہ کے رسول کا اتباع کرنے سے دنیا اور آخرت میں عزت حاصل ہوئی. اب جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں عزت یہ حاصل ہوئی. ٹھیک ہے، اب ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ جو چاند پر جاتا ہے تو اس کو पहले तो समझते थे कि दुनिया में इज्जत मिलती है जो चांद पर जाता है, तो उसको दुनिया में इज्जत मिलती है, ये मुसलमान पहले समझते थे। आज का मुसलमान ये समझता है, यानी 21वीं सदी का मुसलमान क्या समझता है, कि जो चांद पर जाता है उसको दुनिया और आखिरत दोनों की इज्जत मिलती है। राइट, जो चांद पर जाता है उसको दुनिया और आखिरत दोनों की इज्जत मिलती है, ठीक है, क्योंकि 21वीं सदी का डिलेमा, 21वीं सदी का फितना क्या है कि आखिरत को भी, यानी सॉरी आखिरत को नहीं, दीन को भी दुनिया के लिए बना दिया गया, दीन को भी दुनिया की कामयाबी के रंग में डाल दिया गया है और आखिरत की तरफ से तवज्जो हट गई। अब दीन भी वही अच्छा कि जिससे जो है वो दुनिया मिलती हो, ठीक है, बल्कि दीन भी अच्छा नहीं, वो तो पहले ये समझते थे ना कि दीन भी वही अच्छा है जिससे दुनिया मिलती हो, बल्कि पहले अगर आपसे पूछें कि इस जुमले को जरा 21वीं सदी के फितने के मुताबिक ढालें, हम ये कह रहे हैं कि पहले ऐसा होता था कि दीन भी वही अच्छा कि जिससे दुनिया की इज्जत मिलती हो, अब क्या होता है, अब इस जुमले को कैसे मॉडिफाई करेंगे, तब इस वक्त के मुसलमान की सोच वाजे होगी, दीन वही अच्छा कि जिससे दुनिया की इज्जत मिलती हो, ये पुराने जमाने की बात है, इस जमाने की क्या बात है, तो उसके लिए इस जुमले को कोई थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर बता सके। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है वैसे ही, मैं खुद भी अंदाजा है इस बात का, लेकिन शायद आप में से कोई बता सके इस जमाने में क्या चल रहा है, दीन वही अच्छा कि जिससे दुनिया मिल सके या कुछ और, इस जुमले को थोड़ा सा तब्दील करने की जरूरत है, तब जो है ना वो 2025 का मामला समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा इसी जुमले को थोड़ा सा तब्दील करने की जरूरत है बस, दीन वही अच्छा जिससे दोनों जहान की इज्जत मिले, नहीं इन्होंने मॉडिफाई किया, दोनों जहान की इज्जत मिले, नहीं आजकल ये नहीं चल रहा, दीन और दुनिया एक साथ चल सकते हैं, तो आपने पूरे जुमला बदल दिया, दीन वही अच्छा जिससे दुनिया ही मिलती हो, चले थोड़ा सा आपने इसको करीब पहुंचाया है, लेकिन हाँ बिल्कुल सही फरमाया, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि दीन वही है, दीन वही जिससे दुनिया मिलती है, हाँ दूसरा ये उन्होंने भी सही जवाब दिया डायरेक्ट मैसेज में कि दीन तब ही अच्छा है कि जब उससे दुनिया की इज्जत मिले, दीन तब ही अच्छा है जब उससे दुनिया की इज्जत मिले, ठीक है ना, बल्कि इससे भी पहले वाला जुमला ज्यादा बेहतर है कि दीन तो वही है कि जिससे दुनिया की इज्जत मिले, उन्होंने तो एक्चुअली ये अल्फाज नहीं लिखे, लेकिन हम इसको थोड़ा सा सही करके आपके सामने, कि दीन वही है जिससे दुनिया की इज्जत मिले, जिससे दुनिया की कामयाबी मिले, जिससे दुनिया की शोहरत मिले, जिससे दुनिया की पब्लिक मिले, राइट, जिससे दुनिया की पब्लिक मिले, पब्लिक मिलने का मतलब भीड़ लग जाए आपके पास, ठीक है ना, वही दीन है, और अगर भीड़ ना लग रही हो आपके पास तो दीन ही नहीं है, अगर आपकी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर जो है वो बड़े जबरदस्त फॉलोइंग ना हो, आपका दीनदार सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया अकाउंट है जिसमें खूब दीन की बातें होती हैं, तो अगर उसके ऊपर मिलियंस ऑफ क्लिक्स नहीं आ रही हैं, लाइक्स नहीं आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि आप सही दीन नहीं कर रहे हैं, आप सही दीन पर नहीं है, इसका मतलब है आप सही दीन पर कब होंगे, उसी वक्त होंगे जब आपके आपके बहुत सारे चाहने वाले हों, आपके बहुत सारे लाइक्स हों, और आपको जो है ना वो दुनिया भी मिल रही हो, दौलत भी मिल रही हो, शोहरत भी मिल रही हो, सब कुछ मिल रही हो, तभी आप सही दीन पर हैं, वरना आप सही दीन पर नहीं, ठीक है, तो इस वक्त जो है ना वो मार्केट में ये चल रहा है कि दीन तो वही है जिससे दुनिया मिले, ठीक है ना। अच्छा का लफ्ज हटा देना पड़ेगा अब, अच्छा बुरा की बात नहीं हो रही, बल्कि दीन तो वही है कि जिससे दुनिया मिले। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम जो है ना वो मामला ऐसा नहीं था, नबी अलैहिस्सलाम के पास तो बहुत ही थोड़े लोग थे, और बहुत ही हत्ता के आखिरी जमाने में भी पूरी दुनिया की पॉपुलेशन में से नबी अलैहिस्सलाम के पास कितने आए थे, 1,24,000, बस 1,24,000। उस जमाने में भी दुनिया में जो तो पॉपुलेशन होती थी ना उसके हिसाब से बहुत थोड़े लोग, बहुत थोड़े लोग थे पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के हिसाब से। अफ्रीका में भी पॉपुलेशन थी, और एशिया में भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी, और यूरोप में भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी, और सेंट्रल एशिया में भी तुर्कों की भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती थी। कोई भी नबी अलैहिस्सलाम के पास नहीं आता था इल्ला माशाल्लाह, चंद गिने चुने लोगों के। बाकी जो अरब के लोग थे वो 1,24,000, ठीक है। तो यहाँ जो फरमाया कि रसूलुल्लाह का इत्तेबा करने से किस मुकाम पर पहुंचे और दुनिया और आखिरत में उनको कैसी इज्जत हासिल हुई, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम तो भाई चांद पे नहीं गए थे ना, उन्होंने चांद पे जाने की कोशिश करी थी, ठीक है ना। ना उस जमाने की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, जो रोमन्स और ग्रीक्स, ये बड़ी सिविलाइजेशन थी उस जमाने में, बड़ा साइंस के ऊपर उन्होंने काम किया था, रोमन फिलोसफी, ग्रीक फिलोसफी, और चाइनीज, चाइनीज के पास तो और भी ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने चाइनीज से भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस सीखने की कोशिश नहीं करी। हम ये नहीं कह रहे कि आज के जमाने में नहीं पढ़े, बिल्कुल साइंस ना पढ़े, बिल्कुल टेक्नोलॉजी, हम ये कभी भी नहीं कहते। हमारे अपने बच्चे पढ़ते हैं इससे ज्यादा, और हम क्या कहें, आप हमारे अपने बच्चे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है ना। हम तो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, अगर आपसे पूछें हम क्या कह रहे हैं, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ना पढ़ें, हम ये कह रहे हैं नहीं, फिर हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे, तो फिर हम क्या कह रहे हैं, ये भी आप ही बताएंगे। हम कहना क्या चाहते हैं ये सारी बातें करके, कहना क्या चाहते हैं ये सारी बातें करके, ये आप ही बताएंगे। हम आगे बढ़ेंगे नहीं जब तक आप नहीं बताएंगे। खुद अपने बच्चों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुराई क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यही तो सवाल है, जवाब दें इसका, क्यों बुराई कर रहे हैं जब खुद पढ़ा रहे हैं, खुद पढ़ भी रहे हैं, बल्कि खुद पढ़ के पढ़ाते हैं, राइट, या जो खुद साइंस पढ़ाता है, तो फिर बुराई क्यों कर रहे हैं ये बताएं। जब तक नहीं बताएंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों बुराई कर रहे हैं फिर, दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ाते वक्त अल्लाह को ना भूल जाएं, काफिरों को निजाम हर चीज रिलेट ना करके पढ़ाएं। नहीं, ये तो सवाल किया ही नहीं हमने आपसे, हमने तो आपसे ये सवाल किया ही नहीं था कि क्यों पढ़ा रहे हैं, हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं कि बुराई क्यों कर रहे हैं, ये सवाल है। तो भाई सवाल को समझे पहले, फिर उसका जवाब दें। साइंस को अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक पढ़ाएं, काफिरों की मोहब्बत पैदा ना होने दें, ये फिर वही उल्टी सीधी बात। यानी सवाल कुछ किया जा रहा है, जवाब कुछ और दे रही है, तो इसको उल्टी सीधी बात कर जाएगा ना। बेशक आप नबी अलैहिस्सलाम का नाम तो ले रही हैं, तो इस वजह से जाहिर है बात तो आपकी प्यारी ही होगी क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का नाम लिया, लेकिन सवाल तो ये नहीं है ना, सवाल तो ये नहीं किया है साजिद ने। यहाँ पे एक और जवाब आया, क्योंकि जो बातें साइंस प्रूव नहीं कर सकती वो तो कुरान क्या किया थी, बुराई उस सिस्टम की है जिससे साइंस पढ़ी जा रही। यार सवाल समझाए आप, उर्दू जुबान आती है कि नहीं आती है, ये बात पहले बताएं, उर्दू आती है कि नहीं आती है? सवाल क्या है, बहुत सादा सा एक सवाल है भाई, बुराई क्यों कर रहे हैं यार, इसका जवाब है ना, क्यों बुराई कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक जवाब बेहतर बल्कि अच्छा जवाब आया है कि साइंस की अजमत निकालनी है दिल से, ठीक है ना, साइंस की दिल से अजमत निकालनी है। ये पर्पस था नहीं लेकिन हम इसको पर्पस बना रहे हैं, ठीक है। पर्पस का जुमला लफ्ज भी चले बेहतर है, लेकिन वो हम अल्लाह की खशियत के लिए नहीं पढ़ रहे होते, फिर वही उल्टी बात, क्योंकि हमने तरतीब उलट दी, फिर वही उल्टी बात। सो दैट द अजमत ऑफ साइंस इनग्रेन्ड इन अस इज रिमूव्ड, एंड द अजमत ऑफ अल्लाह सुब्हान तआला इज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है ना, ये है जवाब, बेहतर बेहतर जवाब। ठीक है ना, तो साइंस की बुराई क्यों करते हैं, उसकी वजह क्या है कि साइंस को दुनिया और आखिरत में इज्जत का सबब ना समझना शुरू हो जाए, और जो इज्जत का समझ का सबब हमने समझा हुआ है वो इज्जत हमारे दिल से निकल जाए, इसलिए बुराई करते हैं। क्या मुश्किल है इस बात को समझना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपके सवाल ही समझ में नहीं आता तो फिर जवाब भी आपके कहां से समझ में आएगा। राइट, इतना आसान सा एक सवाल किया था कि बुराई क्यों कर रहे हैं, इसका तो हर कोई अपने अपने हिसाब से जवाब दे रहा था, सवाल माशाल्लाह 3-4 लोगों ने सही जवाब दिया मिलाकर। लेकिन भाई ये सवाल था कि बुराई क्यों कर रहे हैं इसकी, ये तो नहीं पूछा था कि साइंस क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तो नहीं पूछा था कि साइंस क्यों पढ़ा रहे हैं, हम तो पूछ रहे थे कि साइंस की बुराई क्यों करते हैं, जब पढ़ाते भी हैं तो फिर बुराई क्यों करते हैं, ये सवाल पूछा था। ठीक है, तो इसका जवाब है कि हम बुराई इसलिए करते हैं ताकि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दुनिया और आखिरत में इज्जत का सबब ना समझें, इसलिए बुराई करते हैं। लिखा है इसको कि नहीं लिखा आपने, लिखा है कि नहीं लिखा इसको आपने अपने पास अभी, ताकि इसको दुनिया और आखिरत में इज्जत का सबब ना समझें, जरूरत का सबब समझें, जरूरत पूरी करनी है, लड़कों को अल्लाह ताला ने कमाने की जिम्मेदारी दी है। ठीक है, तो आज के दौर में कमाने के लिए साइंस पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना, वैसे खाली साइंस पढ़ करके कमाना कोई जरूरी नहीं है, और भी चीजें पढ़ के कमा सकते हैं, लेकिन साइंस भी कमाने का एक जरिया है, साइंस का इल्म, टेक्नोलॉजी का इल्म कमाने का एक जरिया है, और कमाना जरूरत है, मर्दों की जरूरत है, औरतों की जरूरत क्या है, खाना और खिलाना। ठीक है, वो कमा के लाएंगे, ये खाएंगी भी और ये फिर खिलाएंगी भी, उनको भी खिलाएंगी और अपने और उनके बच्चों को भी खिलाएंगी, और उनको जो है वो ईमान वाला बनाएंगी, ईमान वाला बनाएंगी अपने बच्चों को। ठीक है, अल्लाह ताला ने इस तरह से डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है, तो दुनिया और आखिरत में उनको इज्जत, कैसी इज्जत हासिल हुई जब उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की इत्तबा करी। ठीक है, तो वो ये कहते फिरे कि क्या यही गरीब लोग अल्लाह के इनाम व इकराम के मुस्तहिक थे कि हम सब अशराफ को छोड़कर उनको नवाजा गया। ठीक है, तो फारसी का शेर है, मुझे फारसी नहीं आती, हर दमश बर मने दिल सोख्ता लुत्फे लुत्फो गरास या लुत्फे दगर अस्त, सॉरी हाँ लुत्फे दगर अस्त, ई गदाबी के चह शाइस्ता इनाम उस्ताद। तो जो भी ये सब तर्जुमा ही देख लेते हैं, खैर आगे पढ़ते हैं। कशाफ वगैरह की तहकीक के मुताबिक उनका ये कौल इस इब्तला व इम्तिहान का नतीजा है जो उनका ज़ुआफ़ा व मुस्लिमीन के जरिए लिया गया था, वो इस इम्तिहान में नाकाम हो गए। ठीक है, बजाय इसके यानी उनको तो ये देखना चाहिए था ना कि अल्लाह ताला ने देखो इन ज़ईफ़ और कमज़ोर मुसलमानों को, लोगों को जो है वो अपनी हिदायत की नेमत से नवाज दिया है, तो अल्लाह के मुकरब ये लोग बन गए, हालांकि हम सरदार थे, हमारे पास माल और दौलत थी, लेकिन इस माल और दौलत ने हमें फ़ायदा नहीं पहुंचाया। ठीक है, फ़ायदा तो इन लोगों को पहुंच गया जो कि माल दौलत से महरूम थे, फिर भी उनको फायदा पहुंच गया, तो जाहिर उन्होंने ऐसे नहीं सोचा, तो वो इस इम्तिहान में नाकाम हो गए। बजाय इसके कि कुदरत के इस मुजाहरे पर गौर करके इस नतीजे पर पहुंचते कि शराफत और रजालत माल और दौलत वगैरह पर मौकूफ नहीं है, बल्कि इसका मदार इखलाक अखलाक व आमाल पर है। ठीक है, शराफत और रजालत माल दौलत वगैरह पर मौकूफ नहीं है, और ना जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह पर मौकूफ है, ठीक है, ना जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नॉलेज के ऊपर मौकूफ है, बल्कि अखलाक और आमाल पर मौकूफ। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या माल और दौलत हो, इसके ऊपर मौकूफ नहीं है, वो जरूरत है, माल भी जरूरत है, दौलत भी जरूरत है, और शराफत और अदालत भी जरूरत है, वो बगैर इबादत किए हुए, साइंस की इबादत किए हुए बगैर भी तो मिल सकती है, राइट? उसको इज्जत का सबब समझे बगैर भी तो मिल सकती है, ठीक है ना? यही आज के मुसलमान को समझ में नहीं आती बात, ठीक है ना? वो समझता है कि नहीं, जब तक मैं उसकी इबादत नहीं करूंगा ना, जब तक मैं उसके सामने जो है वो सर नहीं टेकूंगा, और जो है वो उसको अपने सर पे सवार नहीं जब तक करूंगा, और उसको इज्जत का सबब जब तक नहीं समझूंगा, उस वक्त तक जो है ना मुझे ना माल मिलेगा, ना दौलत मिलेगी, ना जो है वो शराफत मिलेगी, ना अदालत मिलेगी, ठीक है? ये मसला है सारा का सारा हमारा आज, ठीक है भाई? अल्लाह ताला तो दौलत देते हैं, अल्लाह ताला तो इज्जत देते हैं, अल्लाह ताला तो शराफत देते हैं, ठीक है? आप जरूरत समझ करके उसके अंदर हलाल तरीके से मेहनत करें, बेशक मेहनत करें, ठीक है, लेकिन उसको इज्जत का सबब तो ना समझे ना। मेहनत तो बहुत सारे, आप जैसे मिसाल के तौर पर, खैर बिल्कुल समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, चलें इसको छोड़ कर आगे बढ़ते हैं, कि उन्होंने इस बात को नहीं समझा, वो उल्टा अल्लाह ताला पर ये इल्जाम लगाने लगे कि मुस्तहिक एजाज तो हम थे, हमें छोड़कर उनको क्यों एजाज दिया गया, ठीक है? मुस्तहिक एजाज तो हम थे, एजाज तो हमें मिलना चाहिए था, ठीक है, हमें छोड़कर उनको क्यों एजाज दिया गया, ठीक है? ये जो एटीट्यूड होता है ना, ये एटीट्यूड इंसान को हर जगह नुकसान पहुंचाता है, कि मैं तो मुस्तहिक था, मुझे क्यों ना मिला, आई डिजर्व इट, मुझे क्यों नहीं वो चीज मिली जिसको मैं डिजर्व करता था, ठीक है? दुनिया के अंदर भी आप देख लें, आपके अपने घर के अंदर अगर आप अपने दो बच्चों में से एक बच्चों को कोई चीज दें, दूसरे बच्चों को कोई दूसरी चीज दें, ठीक है, तो जिसको जो चीज नहीं मिली है ना, वो आपसे जो है वो लड़ना शुरू कर दे आकर के, शोर मचाना शुरू कर दे, मुझे क्यों नहीं मिली वो चीज जो आपने भैया को दे दी, मुझे क्यों नहीं वो चीज मिली जो कि आपने जो है वो मेरी बहन को दे दी, मुझे क्यों नहीं दिया? तो आप कहेंगे भाई मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, मैं अम्मी हूं, राइट? मैं समझती हूँ कि उसको इस चीज की जरूरत थी और तुमको इस चीज की जरूरत थी, ये तुम्हारे लिए फायदेमंद है, वो उसके लिए फायदेमंद है, इसलिए मैंने तुम्हें ये चीज दी है, उसको वो चीज दी है। लेकिन वो अड़ जाए, आपका बच्चा शोर मचाना शुरू कर दे, और आपको जो है ना वो कहना शुरू, आपको तो पता ही नहीं है कि आपने क्या चीज किसको देनी है, आपको क्या पता कि किसकी क्या जरूरत है, आपने गलत फैसला किया है, आपको ये बात अच्छी लगेगी, शायद तंग आकर के आप दे दें उसको, उसको भी वो चीज दे दें, तंग आकर के दे दें, लेकिन आपको ये चीज अच्छी तो नहीं लगेगी ना, बल्कि अगर वो और उल्टा सीधा आपको बोलेगा तो आपको और बुरी लगेगी ना ये बात। लेकिन यही मामला अल्लाह ताला के साथ करते हैं ना, और यही मामला वो काफिर और मुशरिक भी अल्लाह ताला के साथ करते थे, ठीक है, दुनिया में भी करते थे और आखिरत में भी यही काम करेंगे, ठीक है ना? ये काफिर जो है ना, ये आखिरत में भी यही काम करेगा, पता है? दुनिया में तो क्या ना कि मुझे क्यों ना मिला, दुनिया में भी यही लड़ता रहा, मुझे क्यों ना मिला, ठीक है? हालांकि अल्लाह ताला ने दौलत भी दी, इज्जत भी दी, मुआशरे वाली जो जमाने की इज्जत होती थी वो भी दी, सरदारी भी दे दी, लेकिन वो जो हिदायत वाली बात थी तो वो इस तरह से बोलने लगे हमें क्यों ना मिला, हमें क्यों नहीं मिली हिदायत, इन गरीबों को क्यों मिल गई, ठीक है? आखिरत में भी जाकर के काफिर इसी तरह की बात करेगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन लोगों का जिक्र करते हुए आखिरत में क्या करेंगे, काला रब्बी लम हशरतनी आमा वक़द कुंतु बसीरा। आखिरत में जाकर के काफिर अल्लाह ताला इसको अंधा खड़ा करेंगे, तो वहां पर ही अल्लाह ताला से कहेगा, क्योंकि वहां पर तो अल्लाह ताला से कॉन्वर्सेशन हो रही होगी, ठीक है ना? अल्लाह ताला इसको नजर नहीं आएंगे, लेकिन कॉन्वर्सेशन होगी इसके अल्लाह ताला से, ठीक है? तो ये कहेगा लम हशर तनी आमा, मुझे क्यों अंधा खड़ा किया गया है, हालांकि मैं तो आंखों वाला था, मैं तो आंखों वाला था, तो आई डिजर्व टू कंटिन्यू टू बी बसीरा इन दी आखिरत, मुझे तो आखिरत में भी आंखों वाला ही होना चाहिए था ना, आपने मुझे अंधा क्यों खड़ा किया? वहां पर भी ये बहस करेगा, ठीक है? तो बड़ों से इस तरह से जो बहस करता है ना, वो असल में उनकी इत्तबा कर रहा होता है, काफिरों की इत्तबा कर रहा होता है, ठीक है? जो भी बड़ों से बहस करता है ना, जो बड़े से मुराद अकल में बड़े और इल्म में बड़े, उनसे बहस करता है कि मुझे क्यों ना मिला, मुझे क्यों ना मिला, मुझे ये ऐसे क्यों किया गया, राइट? तो वो दरअसल किसकी सुन्नत को के ऊपर अमल कर रहा होता है, वो काफिर की सुन्नत पे अमल कर रहा होता है, क्योंकि काफिर दुनिया में भी अल्लाह ताला से ऐसी बहस करता रहा और आखिरत में भी अल्लाह ताला से बहस करेगा। ठीक है, अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए अगर हम इस मर्ज में मुब्तला है तो। अल्लाह ताला ने उसके जवाब में फिर उनको असल हकीकत की तरफ इस जुमले से मुतवज्जे फरमाया। ठीक है भाई, अल्लाह ताला को तो पता होता है ना कि भाई ये लोग किस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला अपने कुरान मजीद में उनको जवाब भी दिया करते हैं ना। ठीक है, तो फौरन अल्लाह ताला ने जवाब दिया इसी आयत के अंदर, अलैहिस्सल्लाहु बिआलम बिश्शाकिरीन, यानी अल्लाह ताला खूब जानते हैं कि कौन लोग हक शनास और शुक्रगुजार है। हक शनास यानी जब हक उनके सामने आ गया तो उसको पहचानते हैं और मानते हैं और फिर उसके ऊपर शुक्रगुजार होते हैं कि हम तक हक पहुंचा, अल्लाह ताला ने हम तक हक पहुंचाया, तो शुक्रगुजार होते हैं। अलैहिस्सल्लाहु बिअअलम बिश्शाकिरीन, क्या अल्लाह ताला आलम नहीं है शुक्र करने वालों के बारे में, ज्यादा इल्म नहीं रखते शुक्र करने वालों के बारे में। मतलब ये है कि हकीकत के एतबार से शरीफ और मुअज्जिज़ वही शख्स है जो अपने मुहसिन का हक पहचाने और शुक्रगुजार हो सके। ठीक है ना, मुहसिन से बदतमीजी ना करता हो, मुहसिन के सामने जुबान ना चलाता हो, बल्कि शुक्रगुजार, और वही मुस्तहिक इनाम व इकराम है, ना कि वो जो रात दिन अपने मुनइम व मुहसिन की नियमतों में खेलने के बावजूद इसकी नाफरमानी करता है। अल्लाह ताला की नेमतें, हम डूबे हुए हैं उन नेमतों के अंदर, ये जान हमारी नेमत है, ये इज्जत हमारे हमें अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, ये घर राइट, ये जो कुछ है हमारे पास, ये सब अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। फिर वही बात दोहराई की खातिर कि हम इसकी पेमेंट तो अल्लाह ताला के पास करके नहीं आए ना, ये तो हमें मिलनी चाहिए थी, क्योंकि हम तो पेमेंट करके आए थे आलमुल अरवाह में। यहाँ दुनिया में आने से पहले हम सब किधर थे? आलमुल अरवाह में थे, वहां पे हमने अल्लाह ताला को पेमेंट करी थी कि जब दुनिया में आऊंगी तो मुझे जो है वो एक घर मिलना चाहिए, मुझे जो है वो माँ बाप भी मिलने चाहिए, ठीक है, मुझे जो है वो औलाद भी मिलनी चाहिए, मुझे जो है फलानी चीज भी मिलनी चाहिए, फलानी चीज भी मिलनी चाहिए। अब दुनिया में अल्लाह ताला ने दी तो अल्लाह ताला ने कोई एहसान तो नहीं किया मेरे ऊपर, मैं तो पेमेंट करके आई थी इसकी, और अगर नहीं मिली तो अल्लाह ताला ने नाउज बिल्ला मेरा हक अदा नहीं किया। ये एटीट्यूड है हमारा, ठीक है, कि हम अल्लाह ताला से ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे अल्लाह ताला ने हमारा हक अदा नहीं किया, हालांकि हमारा तो कुछ भी हक नहीं है ना भाई। जिनको अल्लाह ताला ने नहीं दिया तो उनसे भी अल्लाह ताला ने कोई जुल्म नहीं किया कि उनको कोई चीज नहीं मिली, किसी को घर नहीं मिला, किसी को जो है वो अच्छा खानदान नहीं मिला, किसी को जो है वो अच्छे हालात नहीं मिले, किसी को अच्छी जो है वो गाड़ी नहीं मिली, उनके साथ भी अल्लाह ताला ने कोई जुल्म नहीं किया, क्योंकि वो भी डिजर्व तो नहीं करते थे, कुछ भी डिजर्व नहीं करते थे ना, हमारी तरह जिस तरह हम कुछ डिजर्व नहीं करते उसी तरह वो भी कुछ डिजर्व नहीं करते। ठीक है, और जिसको अल्लाह ताला ने ज्यादा दिया वो इसलिए नहीं ज्यादा दिया क्योंकि वो डिजर्व करता था, ज्यादा बड़ा घर डिजर्व करता था, हक था उसका कोई बड़ा घर मिलना, नहीं, अल्लाह ताला ने अपने एहसान से उसको बड़ा घर दिया। भाई किसी को बीमारी दी वो डिजर्व नहीं करता था बीमारी, अल्लाह की मर्जी उसको बीमार पैदा किया, और जिसको सेहत वाला पैदा किया वो भी डिजर्व नहीं करता था सेहत, उसको अल्लाह ताला ने अपने एहसान से सेहत दी। ठीक है, तो काफिर का क्या काम होता है कि अल्लाह ताला की तकसीम पे एतराज करना, अल्लाह ताला की तकसीम के ऊपर जो है नाराज रहना, ठीक है, और अल्लाह ताला को ब्लेम करना कि ये ना किया और वो ना किया और ऐसे ना किया और वैसे ना किया। मुसलमान हो जाने के बाद हम जैसे मुसलमान जो होते हैं ना, वो हम नाम लेके ब्लेम नहीं करते लेकिन दिल में बहुत ब्लेम करते हैं अल्लाह ताला को। ठीक है, बज़ाहिर जो है वो हम नाम किसी और का लेते हैं कि मेरे शौहर ने मुझे ये नहीं दिया या मेरे माँ बाप ने मुझे ये नहीं दिया, उसने नहीं दिया, लेकिन असल में दिल में जो है ना वो हम अल्लाह ताला के ऊपर एतराज कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये सब दुनियावी नेमतों के बारे में, दीनी नेमत के बारे में तो हमने अल्लाह ताला से मांगना है और अल्लाह ताला से जो है वो यानी कोशिश करनी है कि हमें दीन की नेमत जो है वो ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। ठीक है, बहरहाल चंद अहकाम व हिदायात, इन आयात में फरमाते हैं आयत मस्कूरा से चंद अहकाम व हिदायात मुस्तफाद हुए, यानी हमने इनसे फायदा हासिल किया इन चंद अहकामात को समझने में इन आयात से। तो पहला फायदा जो हासिल हुआ हमें अहकाम के एतबार से, जो पहला फायदा हासिल हुआ इन आयात से, वो ये कि किसी के फटे कपड़े या जाहिरी खस्ता हाली देखकर उसको हकीर व जलील समझने का किसी को हक नहीं। बसा औकात ऐसे लिबास में ऐसे लोग भी होते हैं जो अल्लाह के नजदीक निहायत मुअज्जज व मकबूल हैं। एक हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत से शिकस्ता हाल गुबार आलूद लोग ऐसे भी होते हैं कि वो अल्लाह के मकबूल हैं, अगर किसी काम के लिए वो कसम खा बैठे हैं कि ऐसा ही होगा तो अल्लाह ताला उनकी कसम को जरूर पूरा फरमाते हैं। इन्ना मिन इबादिल्लाही मन लो अक्सम बिल्लाही ला अबरा ला अबरा। ठीक है, हदीस मुबारक है कि अल्लाह ताला के बंदों में ऐसे भी लोग होते हैं कि जो अगर अल्लाह ताला पर कसम खा के कोई बात कर दे ना कि ऐसे ही होगा तो अल्लाह ताला उनकी कसम को पूरा कर दे। और सहाबा इकराम ऐसे ही लोग, सहाबा का वाकयात है मौजूद, कन्फर्म वाकयात है कि किसी बात के ऊपर कसम खाई और बहुत ही बिल्कुल आम से सादा से लोग थे लेकिन अल्लाह ताला उनकी कसम को पूरा कर दे। ठीक है, तो शिकस्ता हाल गुबार आलूद देख करके जो है ना वो ये नहीं समझना कि अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल नहीं है और मैं बड़ी अच्छी घर में रहती हूँ तो मैं अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल हूँ, नहीं, ये कोई मकबूलियत की अलामत नहीं है। दूसरे ये कि शराफत व रजालत का मेयार महज दुनिया की दौलत और सरवत को समझना इंसानियत की तौहीन है। इसका असल मदार तो अखलाक व आमाले सालेहा पर है। किसी को शरीफ, शरीफ से मुराद यहाँ पर इज्जत वाला, शर्फ, ये शरीफ से मुराद भोला भाला और बुद्धू, बुद्धू यहाँ पे मुराद नहीं है शराफत का मतलब, बल्कि शर्फ, शर्फ का मतलब हम उर्दू में भी इज्जत से समझते हैं ना। तो इज्जत और जिल्लत का मेयार दुनिया की दौलत और सरवत को समझना इंसानियत की तौहीन। ठीक है, इंसान को अल्लाह ताला ने अखलाक व अमाल के लिए पैदा किया, जिसके अच्छे अखलाक होंगे अच्छे अमाल होंगे वो इज्जत वाला है और जिसके बुरे अमाल होंगे तो वो वह इज्जत वाला नहीं है। उसके लिए दुआ करनी चाहिए, उसको जो है वो समझाने की, अगर मौका मिले मुनासिब तो उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि अपने अखलाक और अमाल को अच्छा कर लो ताकि तुम भी इज्जत वाले बन जाओ। तीसरे ये यानी उससे नफरत नहीं करनी चाहिए, उसके लिए दुआ करनी चाहिए, उसके लिए सरफाई करनी चाहिए। अगर कोई जलील है भी उसके उसके अमाल से नफरत करना, उस शख्स से नफरत नहीं करनी। तीसरे ये कि किसी कौम के मुस्लिह और मुबल्लिग के लिए अगरचे तबलीग आम भी जरूरी है जिसमें मवाफिक, मुखालिफ, मानने वाले और ना मानने वाले सब मुखातब हों, यानी जो कौम के मुस्लिह यानी जो इस्लाह का काम करने वाले लोग होते हैं, जिनको कि उनके इस्लाह इस्लाह का काम करने वाले कौन लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं कि जिनको उनके बड़ों ने ये जिम्मेदारी दी हो, ये हुक्म दिया होता है कि आप इस्लाह का काम करें, ऐसे कोई मुस्लिह बनता है। ठीक है, खुद ब खुद अपने आप को नेक समझ करके लोगों की इस्लाह करना शुरू कर देना ये तरीका हमारे दीन का नहीं, ये हमारे दीन का तरीका नहीं है। ठीक है, खुद जो है ना सेल्फ अपॉइंटेड मुस्लिह, ये हमारे दीन का तरीका नहीं। हमारे दीन का तरीका तो है कि आप सालिह बने और बुजुर्गों के साए में रह करके सालिह बने, अपने बड़ों के, अपने शेख के, अपने उस्ताद के तहत रह करके सालेह बने, फिर उस्ताद या शेख हुक्म करे कि अब तुम मुसलेह का काम करो, तब जो है वो इस्लाह का काम। ऐसे ही नहीं खामखा में इस्लाह का काम जो है वो जमात बनाई, तंजीम बनाई और इस्लाह का काम शुरू कर दिया, ये कोई तरीका नहीं हमारे दिन का। तो जो कौम के जो ऐसे मुसलेह होते हैं ना जो अपॉइंटेड, नॉट सेल्फ अपॉइंटेड बल्कि ऊपर से अपॉइंटेड, तो वो लोग जो है ना उनके लिए तबलीग आम, यानी आम लोगों में तबलीग करना, जो बिल्कुल ही जो है वो नहीं सुनने वाले लोग हैं, जो बिल्कुल ही अपनी आमियाना जिंदगी में है, तो उन उनको भी बात पहुंचाना, बात समझाना, चाहे वो मानने वाले हों भी, चाहे वो ना मानने वाले हों, मुखालिफ हों, जैसे भी हों, लेकिन उन लोगों का हक मुकदम है जो उसकी तालीमात को अपना कर उस पर चल रहे, ठीक है, जो मान चुके हैं ना उसकी बात और अब वो अमल की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका हक जो है वो पहले आता है। दूसरों की खातिर उनको मुअख्खर करना या नजरअंदाज करना जायज नहीं। मसलन गैर मुस्लिमों की तबलीग के लिए नावाकिफ मुसलमानों की तालीम व इसलाह को मुअख्खर नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि भाई गैर मुस्लिम तबलीग कर रहे हैं तो मुसलमानों को तो क्या जरूरत है तबलीग करने की, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तबलीगी जमात जो हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की तरतीब दी हुई तबलीगी जमात जो होती है, ठीक है, जिसको कोट अन कोट कहा जाता है तबलीगी जमात, तो उनके ऊपर सबसे ज्यादा एतराज करने वाले जो है ना वो यही एतराज करते हैं कि ये गैर मुस्लिमों में क्यों नहीं काम करते, ये जिहाद क्यों नहीं करते, जिहाद से मुराद उनकी होती है कि जाकर के जो है वो इसराइल से जंग क्यों नहीं करते, और जो अमरीका से जंग क्यों नहीं करते, और बरतानिया से जंग क्यों नहीं करते, या तो ये मुसलमानों में क्यों तब्दील करते, ठीक है, गैस गोया के समझ रहे हैं कि ये मुसलमानों में तब्दील करना कोई गुनाह का काम है, ठीक है ना, और बस जो है वो दूसरों से जंग लड़ना यही जो है वो असल काम है करने का मुसलमान, लेकिन जो ऐसा सोचता है तो उसको ना तो इस उसूल का पता कि ये ऐसा नहीं है, बल्कि कुरान मजीद से हम दीन को सीखते हैं ना, ठीक है, तो कुरान मजीद हमें इस उसूल को समझा रहा है कि नहीं, जो अपने हैं ना उनको दावत, उनको उनको सिखाना, उनको समझाना, उनके क्वेश्चंस के जवाब देना, ठीक है, और उनके जो है वो इसलाह की मेहनत करना, ये मुकद्दम है, ये तो पहली प्रायोरिटी है, और जो बाहर के लोग हैं वो भी प्रायोरिटी में है लेकिन वो दूसरी प्रायोरिटी, तो पहली प्रायोरिटी को छोड़ करके खाली दूसरी प्रायोरिटी करना, तो भाई वो तो अगर कोई मुसलमानों का अमीर है और उसके तहत जो है वो पूरी एक जमात है, तो अब वो अमीर जो है वो इस तरह की तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे कि हाँ भाई आप लोग जो है ना वो तो मुसलमानों के अंदर तबलीग करेंगे और आप जो है ये जो है वो बाहर जाके तबलीग करेंगे, फिर तो ठीक है, ऊपर से हुक्म मिल गया, इनको हुक्म मिल गया कि ये अंदर तबलीग करेंगे, उनको हुक्म मिल गया कि ये बाहर तबलीग करेंगे, तो फिर तो ऊपर से प्रायोरिटी सेट हो गई उनके लिए, ठीक है, लेकिन जब ऐसा कोई निजाम नहीं है, ठीक है, ऊपर से तो कोई अमीर का निजाम तो खत्म हो गया ना, जब से बर्तानिया, फ्रांस और जो है ये कॉलोनियल पावर्स ने आकर के मुसलमानों के जो ये सिस्टम्स थे उनको सबको खत्म कर दिया, ठीक है, तो अब तो बस मौलवी रह गए, उलमाए कराम रह गए बस, ठीक है, तो उलमाए कराम जो है वो कोई सियासी हुकूमत वाले तो लोग नहीं होते हैं, इनके पास तो जो है वो सियासी ताकत तो नहीं होती है, मिलिट्री ताकत तो नहीं होती है, तो अब वो कैसे लोगों को कहें कि तुम ये काम करो तुम वो काम करो, कोई उनकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं, कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, तो भाई उलमा ने जो है वो फिर अपना, किसी ने जो है मदरसा संभाल लिया, किसी ने जो है वो तबलीग का काम संभाल लिया, किसी ने जो है वो दावत और इरशाद का काम संभाल लिया, किसी ने जो है वो जिहाद का भी काम संभाल लिया, ठीक है, क्योंकि ऊपर से जो है वो अमारत वाला जो सिलसिला था वो तो खत्म हो गया ना हमारे अपने करतूतों की वजह से, ठीक है, तो तबलीग जमात ने जो है वो अंदर का काम संभाल लिया, मशायख ने जो है वो तबलीग का वो तसव्वुफ का काम संभाल लिया, उलमा ने जो है मदारिस का काम संभाल लिया, अल्हम्दुलिल्लाह संभाल लिया, वरना तो वो भी खत्म हो जाते सारे के सारे, ठीक है, तो ये खाम खा के एतराज जो तबलीग जमात पे करते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं, और दूसरी एक और भी मसला उन लोगों के साथ ये होता है कि उनको अंदाजा नहीं है कि मुसलमानों के अपने अंदर के हालात कितने खराब हो चुके हैं, कितने खराब हो चुके हैं, है ना, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ने तबलीग की मेहनत क्यों शुरू करी थी, वो इसलिए शुरू करी थी क्योंकि मेवत का जो इलाका था जहां पे वो काम कर रहे थे, क्यों काम कर रहे थे मेवत के इलाके में, क्योंकि मेवत के इलाके में रहते तो मुसलमान थे लेकिन उनके घरों में बुत होते थे, वो अपने आप को मुसलमान कहते तो थे लेकिन ना उनको कलमा आता था ना उनको नमाज आती थी, बल्कि उन्होंने अपने घरों में बुत भी रखे हुए थे, ये हाल हो चुका था मुसलमानों, तो उनकी इस्लाह के लिए उन्होंने तबलीग का ये सिलसिला शुरू किया था कि बस उनको निकालो, घर से निकाल करके, माहौल से निकाल करके 3 दिन की जो है वो मस्जिद की जमात में लेकर के जाएंगे या 40 दिन की जमात में लेकर जाएंगे, तब उनकी जिंदगी में कोई ऐसी गहरी तब्दीली आएगी कि वो अपने इस माहौल से बाहर निकल सके। और वाकई ऐसा ही हुआ, ठीक है। तो मुसलमानों के अपने जो हालात है ना, वो इस दौर जमाने में इतने बुरे हो चुके हैं कि ये मुसलमान जो है ना, वो तो गैर मुस्लिमों के अंदर दावत का काम करने के अहल ही नहीं है, उनको खुद कुछ नहीं आता, अगले बंदे को क्या सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन जाहिर है जो इतराज करने वाले लोग होते हैं उनको पता भी कुछ नहीं होता, ये उनको खुद कुछ नहीं आता, बस खामखा इतराज करना ही आता है, बस उनको कुछ आता भी नहीं। बहरहाल, तो उन लोगों का हक मुकदम है जो उसकी तालीमात को अपना कर उस पर चल रहे हैं। दूसरों की खातिर उनको मौखर करना या नजरअंदाज करना जायज नहीं है। अच्छा, तो ये तीसरी हिदायत मिली गोया के इन आयात से। आगे चौथा ये कि अल्लाह ताला के इनामात बकदरे शुक्रगुजारी बढ़ते हैं। जो शख्स इनामात इलाहिया की ज्यादती का तालिब हो, उस पर लाजिम है कि कौल व अमल से शुक्रगुजारी को अपना शिआर बनाए। लइन शकरतुम लाजीदा, ये कुरान मजीद में अल्लाह ताला का वादा है ना। अब मसला ही सारा का सारा यह है कि अल्लाह के वादों के ऊपर तो हमें इतमाद नहीं होता, वो तो आप वो वाला काम करते हैं ना, उस वादे के मुताबिक काम करते हैं जिस वादे पे आपको इतमाद हो, ठीक है। तो अल्लाह का वादा क्या है, शुक्र करोगे तो मैं बढ़ाऊंगा, हमें इस पर इतमाद ही नहीं है। तो कहने की बातें हैं, पता नहीं थोड़ी ऐसे होता है, हमें तो अपना हक मांगना चाहिए, हमें तो कंप्लेन करनी चाहिए, हमें तो जो है ना वो किसी का सर खाना चाहिए, तब जाकर के हमें हक मिलेगा, ठीक है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कुरान मजीद में, नहीं, तुम्हें जो नेमत मिली हुई है ना उस पे शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें नेमत बढ़ा दूंगा। जबकि हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा नजरिया क्या है, जो चीज नहीं मिली है ना उसको हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दो, और वो एड़ी चोटी का जोर जो है ना वो जायज तरीके से नहीं, बल्कि सर खा करके, कंप्लेन करके, दूसरे के जो है वो दिमाग खराब करके, दूसरे के जो है वो ऊपर चढ़ाई करके, हमने वो चीज हासिल करनी है जो हमें नहीं मिली हुई, ठीक है। तो ऐसे तो फिर चीज नहीं मिलती ना। अल्लाह ताला का वादा, और यही वादा सच्चा है, तो बहुत बेहतरीन बिजनेस है ये, तो भाई अल्लाह ताला के साथ बेहतरीन बिजनेस है। जो थोड़ा बहुत भी मिला हुआ है ना आपके हिसाब से, अगर थोड़ा बहुत भी आपको मिला हुआ है, उसी थोड़े पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला उसी को बढ़ाएंगे और वो बढ़ जाएगा, और शुक्र अदा करें और बढ़ाएंगे, और शुक्र अदा करें और बढ़ाएंगे, और शुक्र अदा करें और बढ़ाएंगे, यानी मिलता जाए शुक्र अदा करती जाए बढ़ता जाएगा, मिलता जाए शुक्र अदा करती जाए बढ़ता जाएगा। इससे बेहतरीन तिजारत और कौन सी हो सकती है, लेकिन एतमाद करना पड़ेगा अल्लाह के वादे के ऊपर, तब ये तिजारत मिलेगी, तब इस तरह तिजारत को कर सकेंगे, और जब इस तिजारत को करेंगे तो फिर इसके अंदर फायदा ही फायदा है, नुकसान का तो कोई एतमाद ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि किसी और ने वादा को थोड़ी किया है, ये तो अल्लाह का वादा है ना जो कि हर चीज का मालिक है और राजक है। आयत वइजा जा अकल्लज़ीना युमिनूना से लेके आखिर तक ये मुतअल्लिक़ आइम्मा तफ़सीर के दो कौल हैं। अक्सर हजरात ने इन आयात को आयात सबका और वाक़ सबका ही से मुतअल्लिक़ करार दिया है, और इसकी तारीफ में ये रिवायत पेश की है कि जब रुसाए कुरैश ने बवास्ता अबू तालिब ये मुतालबा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में गरीब और अदना दर्जे के लोग रहते हैं, उनकी सफ में बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम हम नहीं सुन सकते, अगर हमारे आने के वक्त उन लोगों को आप मजलिस से हटा दिया करें तो हम आपका कलाम सुनेंगे और गौर करेंगे। यानी ये जो आयत, अगली आयत है ना, इसके अलैहिस्सलाम के बाद जो फरमाया ना, इजा जा अकल लजीना युमिनूना, कि जब वो लोग आए आपके पास जो कि आप पर एतमाद करते हैं, युमिनूना का मतलब क्या होता है कि जो आपकी बात पर एतमाद करते हैं, आपको सच्चा मानते हैं, ठीक है। युमिनूना भी आयात ही ना, ठीक है, अल्लाह ताला की जो आयात आपने उन लोगों को बताई हैं, जैसे वह इन शकर तुम ला अजीदन्नकुम, ये एक आयत है ना अल्लाह ताला की, तो जो उस आयत पे एतमाद करते हैं, तो ऐसे लोग जब आपके पास आए ना सकुल सलाम अलैकुम, तो आप उनसे कह दीजिए कि तुम्हारे ऊपर सलामती। ठीक है, तो मुफस्सरीन के एक गुरोह ने या एक ग्रुप ने ये कहा कि भाई ये आयत भी जो है ना वो दरअसल पीछे जो वाकया चल रहा था ना उसी की कंटिन्यूएशन में है। तो मुश्रिकीन के सरदारों ने कहा था कि भाई इन लोगों को आप हटा दें, गरीब गुरबा लोगों को हटा दें। वाकई यही था ना कि मुश्रिकीन के सरदारों ने कहा था कि आप इन गरीब मुसलमानों को अपने पास से हटा दें, तब हम आपके पास आए करेंगे। तो उस पर ना हजरत फारूक आजम ने मशवरा दिया था कि इसमें तो कोई मज़ायका नहीं है, मुसलमान तो अपने मुफलिस दोस्त हैं, उनसे कह दिया जाएगा तो कुछ देर के लिए वो मजलिस से हट जाया करेंगे। मुमकिन है कि इस तरह से ये रूसाए कुरैश अल्लाह का कलाम सुने और मुसलमान हो जाए। इतनी अच्छी उमर रज़ादानों ने कितना अच्छा तजवीज़ पेश करी थी और नीयत भी कितनी अच्छी थी, क्योंकि कुफार के सरदार भी जो हैं आखिर को वो इंसान ही है, आखिर को वो अल्लाह के बंदे ही हैं। ठीक है, तो उनका मुसलमान हो जाना कोई बुरी बात कोई थोड़ी है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, अल्लाह का एक बंदा भी हिदायत पा जाए, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो सरदार हो, चाहे वो गुलाम हो। नबी अलैहिस्सलाम ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया कि एक शख्स भी तुम्हारी वजह से हिदायत पर आ जाए, ये तुम्हें सुर्ख ऊंट मिल जाने से बेहतर है। सुर्ख ऊंट उस जमाने के बहुत ही, जैसे कि आज के जमाने में मर्सिडीज की गाड़ी होती है ना, कोई बहुत महंगी तरीन गाड़ी होती है, उस जमाने में सुर्ख ऊंट ऐसी महंगी चीज होती थी। ठीक है, तो एक बंदा भी तुम्हारी वजह से मुसलमान हो जाए तो ये तुम्हारी कामयाबी है। ठीक है, तो ये सरदार कुरैश जो है वो अल्लाह का कलाम सुने और मुसलमान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आयात साबिका में इस मशवरे के खिलाफ ये हुक्म नाजिल हुआ कि ऐसा हरगिज ना किया जाए, ऐसा करना जुल्म और बेइंसाफी है। इस हुक्म के नाजिल होने पर, ठीक है, अब ये अथॉरिटी किसके पास है कि लोगों को कुरान सुनाने से रोक दिया जाए? ये कौन कर सकता है? ये अल्लाह कर सकता है। अल्लाह ही का तो कलाम है ना, अल्लाह ही का तो ये दीन है, अल्लाह ही की तो हिदायत है और अल्लाह ही की जन्नत है। ठीक है ना, तो ये अथॉरिटी अल्लाह के पास है कि वो मना कर दें कि नहीं, इनको कुरान नहीं सुना रहे। लेकिन अल्लाह ने भी तो मना किया ना, वो खाली इस कॉन्टेक्स्ट में मना किया कि अगर इनको कुरान सुनाने की वजह से तुम इन मानने वालों को दूर हटा रहे हो तो मेरा फैसला है कि नहीं, इस कंडीशन के साथ तुम इनको कुरान नहीं सुनाओ, आप इनको कुरान नहीं सुनाएंगे। हाँ, उसके अलावा जब वो अकेले हो, आप उनके पास जा रहे हो, तो इनको कुरान सुनाएं, कोई मना नहीं है कि कुफारे कुरैश को कुरान ना सुनाओ, ऐसा तो कुछ कोई हुक्म नहीं है। ठीक है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दीज पीपल। ठीक है, यानी साहब, तो इतना फरमा दिया कि ऐसा करना जुल्म और बेइंसाफी हो। इस हुक्म के नाजिल होने पर हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला को अपनी राय और मशवरे की गलती वाजे हो गई और डरे कि अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ मैं राय दे करके गुनाहगार हो गया, उसकी माजरत पेश करने के लिए हाजिर हुए नबी अलैहिस्सलाम के पास। ठीक है, अब देखें, वो आपने शायद सुना होगा कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला जो है ना वो ऐसे सहाबी हैं कि ये बात कहा करते थे पहले अल्लाह की तरफ से मामला हुआ, कितनी दफा के ये पहले बात करते थे और अल्लाह ताला उसके बाद उसकी ताईद में कुरान शरीफ की आयत उतारते थे। ऐसे इतने सारे मकाम आते हैं, किसी ने 18 कहे, किसी ने 22-23 मकाम कुरान मजीद में ऐसे हैं जो कि मवाफिकात उमर रज़ियल्लाहु कहलाते। मवाफिकात उमर क्या मतलब? उमर रज़ियल्लाहु ने बात पहले फरमाई थी कुरान की आयत, उसकी ताईद में बाद में नाजिल हुई, जैसे कि पर्दे का हो, पर्दे के जो अहकामात हैं ना, ठीक है, वो उमर रज़ी अल्लाह ने पहले बात की थी नबी अलैहिस्सलाम के पास जाकर के कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना अच्छा हो कि आप अपनी औरतों को हुक्म दें कि ये घर में रहा करें और बाहर निकला करें ना तो पूरी चादर ओढ़ करके निकला करें। ठीक है, ये पहले वाकया हुआ, फिर अल्लाह ताला ने पर्दे की आयत। ठीक है, और इस तरह से और भी बहुत सारे मकामात हैं, लेकिन ये ऐसा भी मकाम इन्हीं उमर रज़ान के साथ भी हुआ कि इन्होंने बात कही और नबी और अल्लाह ताला ने जो है वो उसके खिलाफ हुक्म नाजिल फरमाया और फिर जो है वो उमर रज़ान को माफी मांगनी पड़ी। ठीक है, तो इस पर आयात मुतज़क्किरा या मुतज़क्किरा उनकी तसल्ली के लिए नाजिल। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुखालफत तो करी, गलत बात की, लेकिन तसल्ली भी, ये इसको कहते हैं चहीतापन। तो पिछली क्लास में गालबन आप लोगों के साथ ही बात हुई थी ना कि इसको चहीतापन कहते हैं, यानी गलत बात भी करता है ना कोई चहीता, तो उसके ऊपर उसकी गलत बात को गलत तो कह दिया जाता है, लेकिन मोहब्बत में कमी नहीं आती। ठीक है, इतना महबूब होता है वो चहीता इंसान या चहीता बच्चा कि मोहब्बत में कमी नहीं आती फिर उसके बाद। ठीक है, तो नबी अल्लाह ताला ने फिर तसल्ली के लिए आयात नाजिल करी, जिनका खुलासा यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को गुज़श्ता गलती पर मुआख़ज़ा ना होने से मुतमइन फरमा दीजिए। यह मुआख़ज़ा यानी आप मुआख़ज़ा नहीं होगा आपका, आप बता तो दिया है कि गलती करी है आपने, लेकिन इसके ऊपर आपकी पकड़ नहीं होगी। मुआख़ज़ा का मतलब होता है पकड़ लूंगा। ठीक है, तो मुतमइन फरमा दें कि इनका मुआवजा नहीं होगा, बल्कि सिर्फ यही नहीं कि इस गलती पर कोई मुआवजा नहीं होगा, बल्कि अरहमुर राहिमीन की बेशुमार नेमतों का वादा भी सुना दें और बारगाहे अरहमुर राहिमीन का ये कानून उनको बतला दें कि जब भी कोई मुसलमान जहालत से कोई बुरा काम कर बैठे और फिर अपनी गलती पर मुतनब्बे होकर उससे तौबा कर ले, जैसे कि उमर ने तौबा करी, माफी मांगी बाकायदा आकर, किसी को तो तौबा करना कहते हैं, और आइंदा के लिए अपने अमल दुरुस्त कर ले, यानी इंसिस्ट ना करें अपनी गलती के ऊपर, उस गलती के ऊपर परसिस्ट ना करें, तो इसका मतलब है कि उसने अपने अमल को दुरुस्त कर लिया, तो अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को माफ फरमा देंगे और आइंदा अपनी दुनियावी और उखरवी नेमतों से भी उसको महरूम नहीं फरमा सके। इस तशरीह के मुताबिक ये आयात इस वाक़े नाज़िला इस खास वाक़े में नाजिल हुई, जिसका बयान पिछली आयतों में हो चुका है, और बाज़ हज़ार मुफस्सिरीन ने इस आयात के इन आयात के मज़मून को एक मुस्तक़िल हिदायत नामे की हैसियत से बयान किया है, जो उन लोगों से मुतअल्लिक़ है कि जिनसे कोई गुनाह सरज़द हो गया, फिर नदामत हुई और तौबा करके अपने अमल को दुरुस्त कर लिया। ठीक है, क्या अल्लाह के चहेते बन सकते हैं, या अल्लाह जिसको चाहे बना देते हैं, जिसको चाहे बना देते हैं वो तो 100% दुरुस्त बात है कि अल्लाह ताला जिसको चाहे चहीदा बना दे, ठीक है, अल्लाह ताला कादर है हर चीज के ऊपर, लेकिन क्या हम बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। ठीक है, तो भाई देखें, चहीदा बनने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, कोशिश करने की कोई जरूरत ही नहीं है हमें, हमें तो अल्लाह ताला ने दुनिया में चहीदा बनने के लिए कोई थोड़ी भेजा है, हमें किस लिए भेजा है अल्लाह ताला ने, बंदगी के लिए भेजा है ना, तो बंदगी डिफरेंट चीज होती है और चहीता जरा सा डिफरेंट चीज होती है, हमें चहीता बनने के लिए भेजा ही नहीं है, तो अब हम जो जिस चीज के लिए हमें भेजा नहीं है ना उसको बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, बंदगी की कोशिश करनी। अब अल्लाह की मर्जी वो आपको चहीता बनाए या आपको चहीता ना बनाए, अल्लाह की मर्जी। ठीक है, चहीतापन जो है ना ये बड़ा बड़ा खतरनाक पोजिशन है, ये क्या पता आप जो है वो किसी दिन शैतान आपको ये बावर करा दे कि अब तो आप चहीती बन गई हैं अल्लाह ताला की, अब उसके बाद अगर आपने चहीते वाली हरकत शुरू कर दी ना, पता चला चहीती बनी तो नहीं थी, वो तो शैतान का धोखा था कि आप चहीती बन गई हैं, तो फिर तो अगर आपने चहीती वाली कोई हरकत कर दी फिर तो मारी जाएंगी, है ना, तो भाई ऐसी ऐसा रिस्क लेने की कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है ना, ये बहुत बड़ा रिस्क, बल्कि सबसे बड़ा रिस्क है, ऐसा रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं, साफ साफ हमें बता दिया, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। ठीक है, कोई इल्ला लिया चहीतहून वगैरह कोई नहीं फरमाया, ठीक है, कि तुम चहीते बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं फरमाया ना, बस ठीक, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें अपनी बंदगी की तौफीक अता फरमाए, सही मानो में अपना बंदा बना रहे, बंदियां बना रहे आपसे, वाह दावाना, अल्हम्दुलिल्लाह, सलाम अलैकुम।